ଅଛି ଶ୍ରୁତି ନମି ଜନକ ସୁତାବର
उनका नाम है सरकार हरे कृष्ण
oh. मैं चेयरमैन सचिव की हमारे सहयोग में उनका स्वागत कर रही हूँ।
श्री राम जय राम जय जय राम
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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
ओम अज्ञान तिमिरांधनांजन शलाकाया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
श्री गुरवे नमः हे कृष्ण
करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ये पंखा चल रही है ना इससे क्या ना अच्छा ना आप लोग गर्मी ज्यादा लग रही है क्या हाँ तो सहन करना चाहिए भक्ति में थोड़ी तपस्या होनी चाहिए क्योंकि इससे जो है ना हमें नुकसान करता है जब 6 बजे पहले चला देना चाहिए पूरा कमरा ठंडा रहे और जब स्टार्ट ना कल से कर देंगे तो भगवान शबरी का उद्धार करके अब जैसा कि शबरी जी ने बताया था भक्तिन शबरी कि आप ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करिए और वहाँ पे सुग्रीव जी कुछ प्रमुख बाणों के साथ निवास करते हैं वे आपका सहयोग करेंगे। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर की ओर जो ऋषिमुख पर्वत के करीब था भगवान वहां पे धीरे धीरे बहुत ही, क्योंकि भगवान का जो चलना है, देखना है, बात करने का तरीका सबको मनोहारी, तो भगवान राम आगे आगे और लक्ष्मण पीछे पीछे ऋषिमुख पर्वत की ओर नजदीक आ रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम पंपा सरोवर के करीब आते हुए पहुंचते हैं, उसी समय सुग्रीव की जो नजर है वो भगवान राम की ओर पड़ती है, क्योंकि वो जामवंत, हनुमान जी और कई प्रमुख बाणों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो वो थोड़ा सा डर गए। उन्होंने देखा कि मुझे लगता है ये दोनों भाई देखने में तो इनकी जो चाल है वो क्षत्रियों जैसी लगती है, देखने में काफी सुंदर हैं, मनोहारी छवि है, लेकिन इनका जो चलने का अंदाज है एक वीर क्षत्रियों की तरह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए यहाँ इनको भेजा तो नहीं है, इससे वो डर गया, क्योंकि सुग्रीव बाली से बहुत डरता था। ऋषिमुख पर्वत ही एक अच्छा स्थान था उनके लिए, जहां कि उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। तो जानते थे सुग्रीव, क्योंकि बाली यहां आ नहीं सकता था लेकिन वो किसी को भेज सकता था, इसी डर से वो क्या करे, वो पहाड़ की चोटियों से कभी कूद करके उस चोटी पर जाए, कभी उस पर जाए, अर्थात तो बेचैन हो गए। और जब बेचैन हो गए तो हनुमान जी के पास आए, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान भी हैं और बलवान भी हैं, अब बात करने में बहुत चतुर वाक्पटु थे। तो वो दौड़ करके सुग्रीव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हनुमान देख रहे हो ना, वो तो देखने में तो बड़े सुकोमल सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन कि जो चलने का ढंग है और धनुष बाण तलवार लिए हुए हैं तो क्षत्रियों की चाल है और बड़े योद्धा नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। इसलिए मेरी इच्छा है और मेरा आदेश है कि तुम वहां पर जाओ उनके पास, अब बड़े ही चतुराई से ये पता करना कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं, उनको कहां जाना है और उनका लक्ष्य क्या है, है ना? और देखना कि मेरी तरफ मुंह करके ही बात करना, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर होगी, अगर कोई खतरा होगा तो वही सीधा रख कर देना, नहीं तो जैसा आप समझना, क्योंकि आप बलवान भी हैं, बुद्धिमान में हैं और बात करने में चतुर भी हैं, वाक्पटु भी हैं, इसलिए आप जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा, है ना, सुग्रीव जी के हनुमान जी सलाहकार थे जामवंत और हनुमान जी, तो हनुमान जी वहां पर जब भगवान राम के पास आए तो ब्राह्मण का वेश धर करके आए। जानते हैं ब्राह्मण का जब वेश धारण करते हैं तो स्वाभाविक लोगों की जो प्रवृत्ति होती है ब्राह्मण के प्रति, भक्तों के प्रति, उनका हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, ये स्वाभाविक है। जैसे आप ही लोग बैठे हो, अगर आप लोग माथे पर तिलक है ना हाथ में माला लेकर के अगर कहीं जाएं तो लोग आपको बड़े सम्मान की दृष्टि देखते हैं, ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि ब्राह्मण बड़े पूजनीय होते हैं। अरे यहाँ तक कि भगवान ने तो कह ही दिया है, कि मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ अर्जुन गो ब्राह्मण हिताय च, कि मैं गौओं की सुरक्षा करने के लिए अब ब्राह्मणों के हित के लिए इस पृथ्वी पर मैं अवतार लेता हूँ। अब भगवान वही कृष्ण भगवान इस त्रेता युग में राम के रूप में एक साधारण मनुष्य रूप में आए हुए हैं। किसके लिए? जितने ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, साधु समाज है ना, सबके सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राक्षसों को विनाश करने के लिए भगवान आए हुए हैं। इसलिए हनुमान जी ब्राह्मण का ही रूप धारण करके भगवान के पास आके खड़े हो गए। बड़ा सुंदर दृश्य है क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण तो आगे चले जा रहे थे और हनुमान जी आ करके और सीधा भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। और जब आगे हनुमान जी खड़े हो गए तो निश्चित रूप से भगवान को ठहरना ही पड़ेगा, तो भगवान राम और लक्ष्मण जी रुक गए। तो बहुत ही मधुर भाष्य, जानते हैं हनुमान जी बहुत सुंदर गाते हैं। हनुमान जी जहाँ भी भगवान राम की कथा होती है, कोई आए न आए लेकिन हनुमान जी अवश्य वहाँ मौजूद रहते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। तो यही हनुमान जी बहुत बड़े संगीतकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो जब बोलते भी हैं तो बहुत ही मधुर भाषी है, तो बड़ी मधुरता के साथ दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप श्याम वर्ण के हैं और आप गौर वर्ण के हैं और गौर और श्यामल वर्ण का शरीर धारण करके और देखने में क्षत्रिय रूप, क्योंकि धनुष बाण और तलवार लेकर के हैं। यहाँ वन में किस हेतु किस कारण विचरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम श्याम वर्ण के थे, तो वही पूछ रहे हैं कि आप तो श्याम वर्ण के हैं, आप गौर वर्ण के हैं, क्षत्रिय रूप धर करके कहाँ जा रहे हैं। बड़ी मधुरता से भगवान बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, ये जान लीजिए कि जब भी किसी से बात करिए तो पहले आगे वाले की सारी बात ध्यान से क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, कि जितना अच्छे ढंग से आप सामने वाले को सुनेंगे उतने अच्छे ढंग से उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है कितनी कठोर है लेकिन आपके जो चरण हैं कितने कोमल हैं, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर मधुर है ना और कोमल शरीर, तो ही करें कि आप कि इस कठिन भूमि कंकरेली जमीन पर है ना और आप इतना सुंदर कमलवत चरण नंगे पांव इस चल रहे हैं, किस उद्देश्य से, आपका हेतु क्या है, ये मैं समझना चाहता हूं। आप देखने में बड़े है, मृदुल हैं, मनोहर मनोहर छवि से कहते हैं जिसको देखने से आपका मन हर लिया जाता है, मनोहर छवि अर्थात देखने का मन करता है, है ना। चाहे वो सुंदरता किसी की भी हो, चाहे स्त्री की हो, पुरुष की हो, फूलों की हो, उसे मनोहारी कहते हैं, जो आपके मन को हर लेता है। कि जिसकी ओर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो बार बार देखने का क्या करता है, दिल करता, मन करता। तो वही हनुमान जी कह रहे हैं कि मृदुल मनोहर आपकी जो छवि है, मृदुल भी है और मनोहर भी है, मन को हरने वाली भी है। तो हे प्रभु, आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है। तब भगवान जो है जितनी विनम्रता से हनुमान जी ने पूछा, तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने, तो हनुमान जी एक बात और कह दिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप तीनों देवों में से कोई एक देव तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं, या तो साक्षात नर और नारायण हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप अलौकिक हैं, है भगवान नहीं अलौकिक हैं। तब भगवान मुस्कुराते ही बोले कि हम कौशल देश से आए हैं और हमारे पिताजी का नाम है महाराजा दशरथ, जो कौशल नरेश है, और उन्हीं के आदेश से हम यहाँ पे आए हैं, और मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी भी थी जिसका नाम सीता था, लेकिन यहाँ जो राक्षस लोग हैं उसका हरण कर लिया, और मैं आप सबको खोजते खोजते यहाँ आ रहा हूं। जैसे ही भगवान ने अपना परिचय दिया, है ना, हनुमान जी अपने प्रभु को क्या कर लिया, पहचान लिया। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया के प्रभाव से मैं आपको पहचान नहीं पाया, और अब मैं आपको पहचान गया हूं कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका स्वामी हूं। अब मेरा स्थान आपके चरणों में है। इतना कह करके हनुमान जी दंडवत प्रणाम किया, है ना। और जब दंडवत प्रणाम किया तो जो भेष बना करके आए थे ब्राह्मण का, वह स्वतः क्या हो गया, गायब हो गया, और हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। और भगवान राम ने क्या किया, उनको अपने हृदय से लगा लिया, बोले जय श्री राम। जैसे भगवान ने आलिंगन किया, भक्त और भगवान का जो मिलन है अलौकिक, वो अकल्पनीय, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ऋषिमुख पर्वत पर हमारे साथ चलिए, वहां पे बाणों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जो आपकी समस्या है वही उनकी भी समस्या है, क्यों बेचारे उनका भी राज छीन लिया गया है, उनकी भी पत्नी छीन ले गई है, छीन ले गई है, है ना? तो उनकी समस्या और आपकी समस्या एक ही है, तो अगर दोनों मिल जाइए तो दोनों की समस्या का हल हो जाएगा, आपकी सहायता से उनको राज मिल जाएगा, उनकी पत्नी वापस मिल जाएगी, और उनकी सहायता से आपकी पत्नी मिल जाएगी और उनको आपको राज मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर समय है सखा बनने का, मित्र बनने का। हनुमान भगवान राम को बहुत अच्छा लगा तो कहले चले, और ऋषिमुख पर्वत बड़ा ऊपर था, इधर वार्तालाप हो रही है और दूर से सुग्रीव देख रहे हैं, और जैसे ही देखा कि हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो उन्होंने समझ गए कि वातावरण हमारे अनुकूल है, है ना? और उसी में हनुमान जी ने क्या किया, एक तरफ भगवान राम को बैठा लिया और दूसरे तरफ किसको बैठा लिया, लक्ष्मण का, एक छलांग लगाई वहां से, कहाँ पहुंच गए, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने पहले सुग्रीव का परिचय कराया कि वानर राज सुग्रीव हैं, ये जामवंत जी हैं, ये तार हैं, जो प्रमुख प्रमुख कुछ लोग उनके साथ थे, और ये भगवान श्री राम हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, उनसे परिचय कराते हैं, और महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, और इनके भी अर्धांगनी ग्रहण कर लिया गया है, तो आपकी सहायता के लिए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की मित्रता हो जानी चाहिए। भगवान राम ने कहा कि अग्नि देवता को प्रकट किया जाए और अग्नि को साक्षी दे करके मित्रता बनाई जाए, तो अग्निदेव प्रज्वलित किया गया और अग्नि देवता के सामने वो क्या हो गए, मित्र। भगवान सुग्रीव और भगवान राम क्या बन गए, दोस्त बन गए। ये दोस्ती प्रसिद्ध हो गई कि मित्र हो तो भगवान राम और सुग्रीव की तरह। भगवान राम ने कहा कि आज से आपका दुख हमारा दुख और आपका सुख हमारा सुख। वास्तव में मित्र वही होना चाहिए, और आजकल इस कलयुग में ऐसे मित्र मिलना बहुत कठिन है। ये सच है कि नहीं सच है? आजकल के जो लोग मित्रता करते हैं सब किसके लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, लेकिन भगवान श्री राम जो मित्र का आचरण और शिक्षा दिया है कि मित्र वही है जो दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ रहे, समभाव से रहे। और यदि कोई मित्र गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको अपना उत्तम सलाह दे करके सही रास्ते पर चलने की क्या करे, शिक्षा दे। इस तरह से खूब वार्तालाप हुए। तो भगवान कहते हैं जो सेवक होना चाहिए वो मूर्ख नहीं होना चाहिए। सेवक सट अर्थात जो सेवक होना चाहिए वो मूर्ख नहीं होना चाहिए, और राजा कंजूस नहीं होना और स्त्री उल्टा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को क्या बना दे, नरक। इसलिए उसको गृहिणी कहा गया है। घर का जो सजावट है, श्रृंगार है, एक किससे होता है, गृहिणी से, है ना, स्त्री से। तो स्त्री सुलक्षणा होनी चाहिए। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि अगर नीच कुल में भी कोई अगर कन्या है, स्त्री है, तो उसको लेने में परहेज नहीं करना चाहिए। और उत्तम कुल की में हो कोई कन्या, लेकिन वो सुलक्षणा नहीं है, तो उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो सुलक्षणा और कुलक्षणा, नारी सुनारी और कुनारी, जहाँ कुनारी जो है, ये सब क्या होते हैं, कष्टदायक होते हैं। कंजूस राजा कष्टदायक होता है, मूर्ख सखा कष्टदायक होता है, और दुष्ट भार्या, दुष्ट नारी जो है वो कष्टदायक होती है, और कपटी मित्र, जो कपटी मित्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, कष्टकारी होते हैं। इन चारों लोगों से क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये भगवान सुग्रीव से जब बातचीत करें तो उसमें शिक्षा देते हैं। तो भगवान राम और सुग्रीव बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं, तो भगवान राम ने पूछा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप अपना बताएं। जब दो दोस्त मिलते हैं तो कैसे आप यहाँ तक आए, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। तो भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि आप अपनी कथा और व्यथा, है ना, बताइए क्या कहानी है, आप यहाँ कैसे आए। तब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, हाथ जोड़ करके, कि मैं और मेरा भाई बाली दोनों बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे थे, और बाली और हम दोनों भाई मिलकर के जो राज्य को चला रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं दानों का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, वो आया रात को आया और हमारे भाई को ललकारने लगा युद्ध के लिए। सुग्रीव ने कहा कि बाली को कोई ललकारे, है ना, वो फिर रुक नहीं सकता था, और आधी रात को ललकारे, तो मायावी जो था खूब जोर जोर से गर्जना करके कि बाली डरपोक बहादुर हो तो आओ, है ना। जैसे ही उसकी गर्जना और उसकी ललकार सुनी मायावी राक्षस का, मैदानों का, बाली बहुत गुस्सा करके, बड़ बलवान था ना, बहुत गुस्सा करके वो झपटा तेजी से। संयोग से मैं भी साथ ही में था, बाली के साथ ही था, तो मैं अपने भाई के साथ साथ मैं भी दौड़ा कि भाई अगर हम रहेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। तो हम दोनों भाई उस मायावी के पीछे दौड़े, तो जैसे ही हम दोनों भाई टूट पड़े शेर की तरह मैदानों के पीछे, वो बड़ी तेजी से भागा और हमारे राज से थोड़ी काफी दूर जा करके एक गुफा में प्रवेश कर गया। तो जब मेरा भाई बाली उस गुफा में जाने लगा, तब मुझसे कहा कि सुग्रीव मेरे भाई, जब तक मैं राक्षस को मार करके नहीं आता, तब तक तुम इस गुफा के द्वार पर खड़े रह करके मेरी प्रतीक्षा करना। एक कहकर वो चला गया। सुग्रीव कहते कि हे राम, ये युद्ध पूरा एक महीने तक चला, दिन रात युद्ध चलता रहा, और अंदर गुफा के अंदर लड़ाई चलती रही होगी एक महीने तक। अब मैं वहीं पे खड़ा रहा, लेकिन जब एक महीने के बाद मुझे अंदर से, गुफा के अंदर से चीखने की आवाज आई और खून से भरा हुआ झाग जिस दरवाजे पर हम इंतजार करते वहां से खून की धारा बहने लगी। तो मैंने ये सोचा कि लगता है सुराक्षस ने मेरे भाई को क्या कर दिया, मार डाला। तो मैं एक बड़ा सा पत्थर चट्टान लेकर के उस गुफा को बंद करके और मैं वापस अपने राज्य वापस आ गया। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो जितने भी मंत्री थे सबको जब ये पता चला तो सबने क्या क्या मुझे राजा बना दिया। अब मैं राजा बन गया। तो कुछ दिन के बाद जो मेरा भाई था बाली, वो अचानक दिखाई दे आ गया राज में। सब भौचक के रह गए, क्योंकि सबने तो सो लिया था, को मर गया, लेकिन उसको देख करके सब डर गए कि अब तो कुछ अनहोनी होने वाली है। और सीधे जब अंतःपुर में आया तो मैं उसकी पत्नी तारा को आलिंगन किया हुआ बैठा हुआ था। मैं तो राजा बन गया था और उसकी जो पत्नी थी तारा मेरी रानी बनी हुई थी। और जैसे ही वो आया, इस दृश्य में को देखा तो हे राम, आग बबूला हो गया। मैं तुरंत उठ के खड़ा हो गया और उसके चरणों पर गिर गया। और जो राज मुकुट हमें पहनाया गया था उसको उतार करके उसके चरणों पर रख गिर गया। मैंने बहुत विनती की, लेकिन इतना मारा। अब बाली इतना बलवान था, उसका घुसा सहन करना आसान बात नहीं थी, लेकिन मैं भी भाई होने के नाते सहन कर सकता था। मैं चाहता तो युद्ध कर सकता था, लेकिन बड़े भाई होने के नाते हम जो है एक गलत फंसे हो गए। और जब मारना शुरू किया और मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था, तब मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा और भाग करके मैं इस पर्वत के पास आया, क्योंकि हे राम, ये यहाँ पे आ नहीं सकता था। तो भगवान राम ने कहा, ऐसी क्या बात पर यहाँ नहीं आ सकता था। और दूसरी कथा शुरू की, कहे कि हे राम, एक बार क्या हुआ, मैं दानों के दो पुत्र थे, मायावी और दुंदुभी। ये जो दुंदुभी था वो भी बलवान था। तो एक दिन अपने बल का था लेने के लिए समुद्र के पास गया और सागर को ललकारने लगा कि सागर, तुम अपने आप को बहुत बलवान समझते हो, अगर बल है आकर के मुझसे लड़ो। सागर प्रकट होकर के बोले कि हे दुंदुभी, मैं जानता हूं आप बहुत बलवान हैं, अगर आपको लड़ना ही है तो भगवान शंकर जी की जो श्वशुर हैं हिमवान जी, आप हिमालय पर्वत जाइए, हिमवान से लड़िए, अगर लड़ना ही है तो। अब दुंदुभी सागर को छोड़ करके कहाँ जाता है, हिमालय पर्वत। अब बड़ी बड़ी जो चोटी है अपने ताकत से टक्कर मारने लगा, बलवान था ही। तब हिमवान भी क्या हुए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि दुंदुभी, तुम बहुत बलवान हो, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुमसे कौन लड़ सकता है। तो कहे, मैं यही तो पूछना चाहता हूं, कहे कि मैं लड़ना चाहता हूं। तो कहे, बस एक ही व्यक्ति है, तुम जाओ पाली के पास है ना, और पाली से जा करके लड़ो, वही तुमसे लड़ सकता है। अब वो वहां से आया हिमाचल, वहां से पर्वत से, हिमालय पर्वत से, और आ करके हमारे भाई को ललकारने लगा। भगवान राम लक्ष्मण जामुन सभी कथा सुन रहे हैं सुग्रीव की, पर उन्होंने कहा कि दुंदुभि इतना बलवान था, जब उस कृष्ण ललकारा तो मेरा भाई जो है रुका नहीं, और दुंदुभि को मारने के लिए वो महल से निकला और जाकर के भिड़ गया, तो बहुत विशाल भैंसे का रूप धारण करके है ना, पूरे जमीन को कुरेद रहा था, बड़ी बड़ी नुकीले सिंह लेकर के अब मेरे भाई से लड़ गया है ना। अब बाली और दुंदुभि है ना, ये दोनों बड़ी भयानक लड़ाई हुई, लेकिन बाली ने क्या किया, पहले तो उसकी दोनों सिंगे पकड़ करके उखाड़ दिया है ना, और उसके बाद उसकी एक टांग पकड़ी है ना दुंदुभि की, आकाश में से जैसे चक्री नहीं होती ऐसे इतनी तेजी से नचा करके इस फेंका है ना, 80 यहाँ दूर यहाँ जहाँ पे हम हैं यहाँ पे कहीं यहाँ से क्रॉस करते हुए गिरा है ना, और जहाँ से उगिरा तो वहीं पे मतंग मुनि का आश्रम आता है, एरिया आता है जहाँ पे हैं, तो वो जो खून बह रहा था उसके शरीर से मतंग मुनि के आश्रम के ऊपर वो गिर गया, तो मतंग मुनि को जब पता चला कि सब बाली के करतूत से एक खून से हमारा आश्रम पवित्र हो गया, तो उन्होंने श्राप दिया कि अगर बाली इस क्षेत्र में अगर आएगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तत्काल मर जाएगा, इसीलिए है प्रभु मैं भाग करके जब वो मुझे मार रहा था तो मैं भाग करके यहीं आया कि मैं जानता था कि बाली यहाँ नहीं आएगा, हालांकि बाली ने मतंग मुनि से बहुत गिर गया है कि वो समझौता कर लें है ने और ये श्राप न दें, लेकिन मतंग ऋषि माने नहीं, ते प्रभु इसीलिए डर के मारे मैं, हमारी जो पत्नी है रूमा, हमारा पूरा परिवार जो है अब कौन भोग रहा है, बाली भोग रहा है। अब बाली जो है बहुत ही बलवान है, तब भगवान राम ने कहा, अच्छा भगवान राम ने कहा कि देखो सुग्रीव, मैं एक ही बाण से उसको मार दूंगा, जब भगवान ये बात बोले कि एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा है ना, तो सुग्रीव को विश्वास नहीं था है ना, भगवान ये बात समझ गए कि लगता है मेरी बात पर इनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको कैसे विश्वास होगा है ना, तो कहे कि अगर आप जो दुंदुभि मेरे भाई ने भेजा था ये उसकी जो जर्जर हड्डियां हैं है ना वो पड़ी हुई है, अगर आप इस उसके हड्डियां का जो हड्डी पर ढांचा पड़ा हुआ था सूखा है ना, इसको अगर आप 200 धनुष तक इसको अगर फेंक देंगे तो मैं मान जाऊंगा है ना, तो भगवान क्या किया, अपने बाएं हाथ के पैर के अंगूठे से उसको ऐसे छुआ उछाल दिया, काफी दूर तक चला गया, जितना कहा था सुग्रीव उससे भी दूर चला गया, लेकिन सुग्रीव ने कहा कि हे राम, जब मेरे भाई ने दुंदुभि को फेंका था तो पूरा मांस खून पूरा वजनदार था, अब तब भेजा था, तो सूखी हड्डी है तो हल्की हो गई है इसलिए हमें अभी भी क्या है संदेह है। भगवान थोड़ा अटपटा लग रहा था कि तब उन्होंने कहा कि ये जो ताल के वृक्ष हैं सात एक लाइन में, अगर आप अपने बाण से है ना इसको मार गिरा देते हैं तब मैं मान जाऊंगा। तो बाली सुग्रीव ने जब ये बात कही तब भगवान श्री राम ने कहा एक बाण ऐसा निकाला है ना जिसको भगवान खींच कर इस तरह से मारा कि सातों ताल का जो पेड़ थे एक लाइन में उनको छेद करते हुए गिराते हुए और पाताल तक चला गया और पाताल से जा करके असुदर आया है ना और भगवान के तर्कश में वापस आ गया। जैसे ही ये दृश्य देखा सुग्रीव ने उनको क्या हो गया विश्वास हो गया क्योंकि ऐसा बाण अभी तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि जो सातों ताल को गिरा करके अब पाताल में प्रवेश कर जाए और वहां से निकल करके अब पुनः वापस तर्कस में आ जाए तब उनको क्या हो गया विश्वास हुआ। तब भगवान राम ने कहा कि अब इसमें देरी नहीं करना चाहिए चलो चलते हैं युद्ध के लिए है ना जा करके ललकारो। और सुग्रीव राम का बल पा करके जो है कई और भाई को ललकारने के बाली मैं सुग्रीव बोल रहा हूँ है ना मैं तुमको तुमसे युद्ध करना चाहता मार बड़े तेजी से कब गरज गरज करके जब सुग्रीव की आवाज सुनी तो बाली को बड़ा आश्चर्य हुआ कैर सुग्रीव हमको ललकार रहा है और उसे रहा नहीं गया है ना और दौड़ करके गुस्सा करके आया अब भिड़ गए दोनों भाई बाहर निकल माल से बाहर आकर के बाली सुग्रीव लड़ाई शुरू हो गई है ना। अब सुग्रीव जो है खूब घुसा मार रहे हैं और बाली सुग्रीव को मार रहा है लेकिन बाली जिस तरह से धुनाई स्टार्ट कर दिया कि उनके होश उड़ने लगे सुग्रीव के इतना मारा घुसा लात इतना मारा और वो पैसे जब मौका मिलता था उड़ के देखते थे कि भगवान मार क्यों नहीं रहे हैं। अब भगवान ने बिल्कुल बाण नहीं छोड़ा अब वो इतनी मार खाए अब जब देखे कि अब हमसे मार सहन नहीं हो पा रहा है वो भाग आए भगवान राम के पास दौड़ करके बाली कुछ देर तब दौड़ा कायर कहीं क्या मुझे ललकार रहा है ना चलो अब तुम्हें छोड़ देता हूँ है ना क्यों भाग आए थे। बाली अपने महल में वापस चला गया। इधर सुग्रीव को लेकर के भगवान आ गए सुग्रीव कराते हुए बोले ये बहुत बाली का घुसा सर कला आसान काम नहीं था है ना वो पहले से जाते थे कहे कि हे प्रभु जब आपको मारना ही नहीं था उनको भेजा क्यों मार खाने के लिए मैं पहले सब बोल आपको बताया था कि मेरा भाई नहीं दुश्मन है ना अब मैं दुश्मन की तरह इस तरह से मारा पीटा कि मैं अब आपको नहीं मारना था तो आप ये झूठा वादा क्योंकि आप उनको भेजा ही क्यों है ना मार खिलाने के। भगवान बड़े मुस्कुराते हुए सुग्रीव की दशा देख करके क्योंकि पूरे शरीर में दर्द हो रहा था इतना घुसा जहाँ लगा था लात घुसा वो सब जगह दर्द हो रहा था और फिर भी बहादुर थे बोल पा रहे थे है ना तब भगवान राम समझ गए। तो भगवान राम बहुत ही मधुरता के साथ और अपना हाथ जो है उनके सर पर रख करके अब पूरे शरीर को सहलाते ही बोला कि सुग्रीव मुझे तो बड़ा आश्चर्य रहा था कि तुम दोनों भाई जुड़वे जैसे हो मैं तो पहचान नहीं पा रहा था कौन बाली कौन सुग्रीव एक जैसे दिखते हो तो भला बताओ मैं कैसे मारता कहीं गलती से अगर तुम्हें लग जाता तो मैं तो कहीं की नहीं रहता इसीलिए तो मैंने नहीं मारा। देखो भगवान कितने चतुर हैं बड़ी चतुराई भरी बात कही क्योंकि तुम दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे। हाँ, मुझे तो मैं तो भ्रमित हो गया। हाँ, किसमें सुग्रीव कौन बालिका है। इसी असमंजस में मैंने बाण नहीं छोड़ा। अगर बाण हम छोड़ देते तो तुम्हें लग जाता तो मैं क्या करता, है ना। अब बात तो सही थी, सुग्रीव चुप हुए, लेकिन भगवान जो हाथ उनके ऊपर रखा वो चमत्कारिक हो गया। उनका सारा दुख दर्द क्या हो गया, चला गया, और फिर तरोताजा हो गया। देखो भगवान कितने कृपालु हैं, एक हाथ से उनका दुख हरण कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का क्या कहते, दुख हरता है। भगवान कष्ट का कैसे हरण करते हैं, कष्ट उनके दूर करते गए। और बातों से उन्होंने क्या कहा कि सच्चाई बोल दी कि एक जैसे, तो कहे कि इस बार मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा। प्रभु मैं अगर इस बार मारेंगे तभी भेजिएगा, देर मत करिएगा। तुम लक्ष्मण जी से कहा कि एक हार जो है इनके गले में पहना दीजिए, एक फूल का हार उनके गले में डाले, कि इससे हार से पता चलेगा कि ये सुग्रीव है, है ना। तो उनके गले में एक हार भगवान डाल करके कहा कि अब जा करके ललकारो, अब इस बार जो है गले में हार की ताकत है ना। भगवान राम का साथ, राम और लक्ष्मण एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए, है ना। और सामने युद्ध शुरू हो गया। अब बाली बलवान था ही, है ना। बाली को एक आशीर्वाद था कि बाली से जो भी युद्ध करेगा, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो उससे युद्ध करेगा तो सामने वाले का जो बल है वो 50% आधा बल वो स्वतः अपने आप बाली में ट्रांसफर हो जाता था, आगे तो वो जीतेगा ही। जैसे आप लड़े और आपका आधा बल अगर उसके पास चलेगा तो ही जीतेगा, तो ये उसको वरदान प्राप्त था। यही कारण था कि कोई उससे जीत ही नहीं सकता था, वाले से सब डरते थे। यहां तक बताया गया है कि रावण जब पूरे विश्व विजय प्राप्त करने के लिए गया था, तो एक दिन वो बाली के यहां भी गया। अब बाली उसमें समुद्र के किनारे खड़ा होकर के जानते क्या करता है, संध्या वंदन कर रहा था। रावण जो है चोर की तरह, क्योंकि वो ऐसे हाथ के अर्ध दे रहा था, है ना। रावण पीछे एकदम पीछे ताकि बाली देख जाने न, और चाहता था कि बस पीछे जा करके अब बाली को एक गदा मार करके शंख फूंक देता कि मैं बाली को विजय प्राप्त कर लिया, कि बाली से विजय प्राप्त कर लिया, ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन जो बंदर होते हैं उनको आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्थिर रह नहीं सकते। बंदर स्थिर रह ऐसा हो नहीं सकता, वो चक्कर मकर ताकता ही रहता है। रावण के पता नहीं चला और बाली को पता चल गया कि पीछे रावण आ रहा है, बानर जाती है, अब उनकी गर्दन पूरा यहां तक पीछे जैसे घूम जाती है, अगर आप बानरों को देखेंगे, ऐसी स्थिति। रावण के पास पत्र, जैसे ही रावण उसके रंज में आ गया, बाली के हाथ के रंज में आ गया, बाली ने क्या किया, ऐसे पकड़ करके और अपने कांख में ऐसे दबा लिया रावण को, हाथ जोड़ लिया। रावण के आंखें निकलने तिलमिलाने लगा, वो कितना बलवान किया, आज तक किसी ने रावण से ऐसा किया नहीं था। और यही नहीं, वो पूरा 6 महीने तक किसी से दबा करके पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करके और फिर अपने घर के अपने राज में आया और के पेड़ में उनको क्या करे बांध दिया रावण को। इतना बड़ा बलवान था, रावण को यहाँ पर दबाया को पता भी नहीं चला, है ना। और ला करके पेड़ बांध दिया और बंधा रहा। वो तो पुलस्त मुनि के, पुलस्त मुनि का नाती था, वो विश्व मुनि का पुत्र था। तो कब जब पुलस्त मुनि आए, बाली से कहे कि बांध दो, है ना, इसको छोड़ दो, है ना। तो पुलस्त मुनि के कहने से वो बाली ने रावण को छोड़ा। रावण अगर अपने जीवन में किसी से दोस्ती की, किसी को अगर बलवान माना, किसको माना? बाली को। तो ऐसा बाली भयानक युद्ध चल रहा था, और अब भी ये दूसरे समय भी, क्योंकि जैसे जैसे सुग्रीव का बल ट्रांसफर होता चला गया तो सुग्रीव कमजोर पड़ते गए, कि बाली से कोई भीड़े फैले, उसका बल ट्रांसफर होना था आशीर्वाद से, है ना। इसलिए अब सुग्रीव कमजोर पड़ने लगे। अब मौका पाकर सुग्रीव फिर राम की ओर देख रहे, देर तो नहीं करे इस बार, है ना। पहली बार तो चूक गए थे, है ना। अब भगवान समझ गए कि अब जो है सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं, अब बेचैन हो रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया, एक तीर निकाला और पेड़ के पीछे से छोड़ दिया, और तीर सीधा किसके छाती में पड़ा? बाली के। जैसे ही बाली के छाती में वो बाण चुभा, है ना, बाली गिर गया। जब बाली गिर गया तब भगवान राम और लक्ष्मण जो छुपे हुए थे आ करके खड़े हो गए बाली के सामने, है ना। सुग्रीव, है ना, ये सब लोग जो है आके खड़े हुए। बाली कराते हुए बहुत दर्द भरी बातें कहना शुरू किया कि हे राम, मैं आज मैं तो सोच नहीं सकता था कि आप मैं इस तरह से मारेंगे, है ना, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, धर्म के प्रतिष्ठापक हैं, है ना। और जब कोई दो क्षत्रिय आपस में लड़ते हों तो कोई तीसरा अनजान में नहीं मारा, ये अच्छा नहीं है। पर आज तक तो हम आपके क्षेत्र में, राज्य में कभी कोई उपद्रव नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया, है ना, हमारी आपसे तो कभी शत्रुता ही नहीं थी, नहीं थी, तो आपने हमको क्यों मारा? मुझे, है ना, सुग्रीव को आप प्यार किए और मुझे किस कारण से मारा, है ना, ये मेरी समझ से परे है। भगवान उसकी दर्द भरी तार्किक बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा, कि हे बाली, अनुज बधू, भाई की पत्नी, भगिनी, बहन और सुत, अपने पुत्र की औरत, ध्यान सुनेगा, भाई की पत्नी, अनुज बधु, भगनी मतलब बहन, सुत नारी अपने जो पुत्र है उसकी स्त्री, शुनसठ हे मूर्ख, और कन्या, इन चारों को कोई अगर अपनी कुदृष्टि से भी देखता है तो उसको मारने से, उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब तुमने ऐसा किया, तुम अपने अनुज की पत्नी अर्थात सुग्रीव की पत्नी रुमा को अपनी रानी बनाया, संभोग किया, है ना। अनुज बधी बहन, अपने पुत्र की पत्नी जो बहू लगती है ना, बहू बहू, और कन्या कुमारी कन्या कि जो उसे कुदृष्टि से देखता है, संभोग करने की अलग बात है, कुदृष्टि से अगर इन चारों को देखता है तो उसका वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए तुम्हारा हमने वध किया। फिर भगवान बोलते हैं, कि हे मूर्ख, तुम कितने अभिमानी हो कि तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी कौन तारा मना रही थी, लेकिन उसकी बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात तुम अपने स्त्री की बात मानी नहीं। इस पर जो है बाली ने बहुत तर्क संगत बात कही, कहा कि हे राम, स्त्रियों की बात कभी मानना चाहिए और कभी नहीं भी मानना चाहिए। ऐसा बोला बाली। क्या बोलता है कि स्त्रियों की जो बात है कभी मानना चाहिए और कभी नहीं मानना चाहिए। अरे आपके पिता महाराज दशरथ अपनी पत्नी की बात मान करके स्वर्ग सिधार गए, और आप बन बन भटक रहे हो। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली, कहाँ हैं, मारे गए। और आप भी अपनी पत्नी सीता की बात मान ली और आज उनका हरण हो गया, और आप दर दर भटक रहे हो। स्त्री की बात तो मानी आप लोगों ने, तो अगर हमने नहीं मानी तो कौन सा गुनाह कर, आपने बात मानकर कौन सा काम कर लिया, अच्छा काम कर लिया। बड़ा सुंदर तर्क दिया कि अपनी स्त्री की बात मान करके महाराज दशरथ आपके पिताजी क्या दुर्दशा है, और आप अपनी पत्नी सीता की बात मान करके और आप यहां बन बन भटक रहे हैं, उनका हरण भी हो गया। भगवान चुप हो गए। फिर भगवान ने जो बात कही लास्ट में, उसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। भगवान ने कहा कि मम भुज बल आश्रित तही जानी, अमारा चहस्य अधम अभिमानी। ये बात जो है जब भगवान ने कही, बाली हार गया। भगवान ने कहा कि रे मूर्ख, तुम्हें मालूम था कि सुग्रीव पर हाथ किसका है, मेरा है और मेरे आश्रित है, इतना जान करके भी है ना तुम अभिमान में आकर के है ना और उसको मारना चाहा, और जो मेरे आश्रित हो जाए राखे कृष्ण मारे के, जिसको मैं बचाना चाहूं, जिसके पक्ष में मैं हूं, ये तुम्हें मालूम था, तब भी तुम जो है अपने अभिमान में आकर के है ना उसको मारना चाहे, इसलिए मैंने तुमको मारा। इसका कोई उत्तर नहीं था उसके पास, बाली के पास। फिर बाली ने क्या किया, हाँ जोड़ लिया कि हे प्रभु, अब मेरा जो अहंकार है खत्म हो रहा है, मैं अब आपको क्या कर रहा हूं मैं पहचान रहा हूं। जैसे ही अहंकार खत्म हुआ, भगवान इतने के भगवान को कृपा सिंधु क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो अच्छी नहीं लगती, वो क्या है, अहंकार, अभिमान। जैसे ही बाली, ये शिक्षा है आप लोगों के लिए, जैसे बाली का अभिमान खत्म हुआ और वो अपने असली भक्ति स्वरूप में आया, भगवान जानते क्या गए, भगवान पानी की तरफ पिघल गए है ना, द्रवित हो गए भगवान। भगवान बड़े ही मधुर शब्दों में कहते हैं है ना, कि हे बाली, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको सुरक्षा प्रदान कर सकता हूं, अर्थात अब तुम मृत्यु को नहीं प्राप्त करोगे। भगवान इसको तुरंत हाथ से बोला है ना, क्योंकि भगवान से जिस अभी तो अकड़ के बोल रहा था, अभिमान से बोल रहा था, लेकिन जैसे ही बाली ने है ना मधुर और विनम्रता की वाणी से, शब्दों से भगवान से बात की, भगवान विनम्रता से प्रभावित हो जाते हैं। तो यदि हम हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए इस दृश्य से कि भगवान की कृपा यदि हमें प्राप्त होगी तो सिर्फ विनम्र बनने से होगी। बाली जैसे अभिमानी अहंकारी अधम है ना, ये भगवान खुद कहे अधम अभिमानी अतिशय अभिमानी, ये सारी उपमा भगवान ने खुद कही थी बाली से है ना, कि अतिशय अभिमानी अधम अभिमानी, तुम अधम भी हो और अभिमानी भी हो। और वही भगवान जैसे ही उसका अभिमान खत्म हो गया और जैसे विनम्रता आ गई है ना, प्रभु उसके हो गए और भगवान ने कहा कि बाली अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुम चाहो तो जीवन तुम्हारा हम समाप्त नहीं करेंगे, तुम जी सकते हो। जैसे ही ये बात भगवान के मुखारविंदों से निकले है जानते हैं, बाली की आंखों में आंसू हुए कि हे प्रभु, जन्म जन्म से बड़े बड़े योगी तपस्वी तपस्या करते हैं कि जब उस शरीर छोड़े तो उनके मुख से एक बार आपका नाम राम निकल जाए है ना, और आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इतना चाहते हैं कि मरने के समय आपका नाम उनके मुंह से निकले, और मैं कितना भाग्यशाली बड़ा भागी हूं कि आज मैं आपके हाथों आपके सामने और आपके धाम जाऊंगा। अगर आप हमको जीवन देंगे तो यह दृश्य उसमें आएगा या नहीं आएगा, इसलिए ये अवसर मैं नहीं छोड़ना चाहता अब हमारे, क्योंकि जिसको स्वयं प्रभु मिल जाए है ना, अब उनके सामने अगर हम आपके धाम जाएं तो इससे बड़ा अहोभाग्य हमारा क्या हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, ये मेरा बेटा अंगद है ना, अंगद बेचारा रो रहा था कि ये मेरा बेटा अंगद है, युवराज है, ये मेरे जैसा बलवान भी है और बुद्धिमान भी है, और सीता जी की खोज में ये बहुत सहायक बनेगा। बाली ने बात एक बात बोली थी, अगर आप सीता जी की जरूरत थी तो मैं तो रावण का जानता हूँ है ना, हम तो पकड़ के हम दिलवा देते, लेकिन भगवान के हाथों उसका उद्धार होना था है ना, तो इसलिए कहा कि ए मेरा भाई है। और जैसे ही वो विनम्र हो गया, उसका अहंकार खत्म हो गया, और जैसे ही अपना हाथ जो है अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया, पूरा दृश्य जो है बड़ा गमगीन हो गया। अब फिर उसने क्या किया, भगवान उसके गले में एक सोने की माला थी, हार था है ना, जिसमें सदैव लक्ष्मी का निवास रहता था, वो सोने की हार निकाल करके और सुग्रीव के गले में डाल दिया। कहा भाई अब इसको तुम पहनो, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम किसके मित्र बन गए, भगवान के मित्र बन गए। और इतना कह करके राम के सामने ही भगवान राम के पास बाली चला गया। और जैसे ही बाली ने शरीर छोड़ा, उसी समय तारा जो उसकी पत्नी थी रोती बिलखती, जैसे ही ये न्यूज़ फैली, संदेश फैला चारों तरफ, सब दौड़ करके रोने लगे है ना। और जो दृश्य क्रिएट हुआ तब जो सुग्रीव थे ना है ना, उनका वो भी पिघल गए। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि मैं राजा बनने के स्वार्थ में आकर के हमने अपने भाई को गंवा दिया, इसलिए हे प्रभु मैं खुद अब जीना नहीं चाहता। पिघल गए, सुग्रीव के आंखों में आंसू आ गए, तारा का बिलाप सुन करके यहाँ तक कि भगवान भी कुछ पल के लिए क्या हो गए, बिहोर के वो दृश्य ऐसा क्रिएट हो गया है ना, कि बाली जिस ढंग से उसने अंत में शरीर छोड़ा भगवान के चरणों में है ना, तो सुग्रीव भी इस तरह से बात करने लगा। लेकिन भगवान 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 ने कहा कि देखो श्री, ये सब जन्म और मरण ये सब किसके हाथ में होता है? विधि के हाथ में होता है। स्वयं विधि, जो विधि है वो स्वयं ये बात कर रहे हैं। भगवान राम स्वयं भगवान है, वो खुद ये बात करें कि सब किसके हाथ में है? उन्हीं के हाथ है। तो जन्म लेना और मरना ये विधि के हाथ में है। इस संसार में जो भी आता है सुग्रीव, उसको जाना ही होता है। इसलिए अब बाली का वध हो चुका है, आप सब अंगद तारा जी तारा थे, उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पति अकेले स्वर्ग में नहीं रह सकते मेरे बिना, इसलिए मुझे भी आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए, अर्थात मुझे भी मेरा वध कर दीजिए, है ना। भगवान राम से प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, है ना। और भगवान ने कहा कि सुग्रीव से कि पालकी मंगाई गई, है ना, पालकी समझते ना, पालकी मंगाई गई और बाली की जो का जो शव है उस पालकी में रख करके और राज्य की ओर लेके ले जाया गया कि जाकर इसका अच्छी तरह से दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दी हनुमान जी कि ये सब दाह संस्कार करा के और फिर सुग्रीव को राजा अभिषेक करके राजा बना दीजिए। और जो अंगद है ना, इकलौता बेटा बालिका, इसको युवराज के पद पर करके इस सब व्यवस्था तत्काल की जाए। तो पूरा जुलूस निकला उसका, पालकी पे आगे आगे उसका सौ सब सब बड़े सब बानर लग करके सिर्फ रोते बिलखते हुए ले जाते हैं। अब भगवान अपने ऋषिमुख पर्वत जहाँ पे ठहरे हुए थे सुग्रीव के साथ वहाँ पहुँचते हैं। श्री राम, जय जय राम, बोले सब
राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम,
श्री राम, जय 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 राम, जय जय राम,
जानकी वल्लभ जय सिया राम,
जानकी वल्लभ जय सिया
राम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, श्री राम, जय राम, जय जय राम,
श्री राम, जय राम, जय जय राम,
जय रघुनंदन जय सिया
राम,
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन
जय राम,
श्री राम, जय राम, जय
जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय
राम। तो इस तरह से दाह संस्कार हुआ बाली का, फिर सुग्रीव का राज अभिषेक किया गया और सुग्रीव जो है राजा बन गए और अंगद युवराज बन करके वहाँ पे रहने लगे। तो भगवान राम के पास आए थे, भगवान राम ने कहा कि अब चूंकि वर्षा ऋतु आ रही है तो वर्षा ऋतु में सीता जी का खोज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे बरसात होता है वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप ये 4 महीने जो है आप आनंद उठाइए, किसका राज्य का, और हम जो हैं ये 4 महीने यहाँ पर्वत पे बिताएंगे, लेकिन जैसे ही वर्षा खत्म हो जाएगी फिर हम लोग सब मिल करके अपना काम करेंगे, सीता जी की तलाश में करेंगे। ऐसा हुआ तो अब जो है वर्षा ऋतु आ गई है, तो वर्षा ऋतु का जो आनंद है ये सिर्फ गांव में और जंगलों में ही मिलता है, शहर में तो पानी बरसता है, कीचड़ हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतना सुंदर वर्णन किया गया शास्त्र में कि भगवान पूरा आनंद ले रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो, और राम से लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखिए कितना सुंदर काली घटा बादल छाए हुए हैं, गरजते हुए उमड़ घुमड़ करके बरस रहे हैं, और जिससे बिजली चमकती है कितना अच्छा लगता है, कभी बादल इधर दिखते हैं इधर सूर्य दिखाई देता है, और जो रोशनी पड़ता है तो इंद्र का धनुष 7 रंग का दिखाई देने लगता है, एक दृश्य अकल्पनीय है, कितना अच्छा है वर्षा ऋतु। और जब बारिश होती है तो सब तृप्त हो जाते हैं, ये देखिए ना ये जो वृक्ष और पौधे ये सब सूखे मुरझाए हुए थे, वर्षा ऋतु आने से पानी मिलते ही जल मिलने से ही ये कितने तृप्त हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, इनके ऊपर जितनी धूल मिट्टी के जानवरों से उड़ चलने से उड़ती है, हाथियों के चिगाड़ से, ये सब पूरा इनके पत्ते साफ हो गए हैं, कितना हरा भरा दिख रहे हैं, कोयल किस तरह से कूक कर रही है, है ना, भौरे फूलों पर कैसे मड़ा रहे हैं, ये जो मेढक हैं ये किस तरह से ऐसा धुन निकाल रहे हैं, ये लिखा गया शास्त्र में, ये वर्षा ऋतु का वर्णन कई पेजों में है, हम इतना नहीं बता सकते, इतना टाइम नहीं है, तो बता रहे थे कि किस तरह से कितने लोग वर्षा ऋतु मेढक को देखा है बोलते हैं, हाँ बड़ा आनंद आदर आता है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, और कुछ ऐसे मेढक होते हैं जिनको क्या कहते हैं बरसाती मेढक, वो बरसात में ही निकलते हैं और पीले पीले होते बड़े बड़े, और जब बोलते हैं तो काला काला ऐसे वो निकलता है टर टर करके। तो भगवान राम उन कहते कि जो दादुर हैं उसको संस्कृत में दादुर कहा जाता है ना, अवधी भाषा में कि जो दादुर हैं मेढक हैं, है ना, इतना कितना अच्छा ये बोल रहे हैं जैसे कोई पंडित वेद पढ़ रहा हो, भगवान ऐसा बोल रहे कि दादुर का जो धुन है ऐसे लग रहा है कि जैसे पंडित लोग क्या कर रहे हैं वेद का पाठ कर रहे हो, भगवान राम हर चीज में आनंद और अच्छी चीज देखते हैं कि मेढक की आवाज उन्हें एक पंडित की आवाज लग रही है, ये भगवान की महानता है। तो इस तरह से खूब वर्षा ऋतु का दोनों भाई आनंद रहे, जब बिजली चमकती थी है ना, बादल उमड़ घुमड़ कर गरजते थे, तो भगवान राम कहते थे कि जैसे ही बिजली चमकती है आवाज होती है मुझे सीता जी की याद आती है, मुझे डर लगने लगता है, कि इस अवस्था में सीता जी कैसे होंगी, कि वहां भी पानी बरस रहा होगा, कि जब वर्षा ऋतु आती है तो सब जगह आती है, है ना। तो कहीं किसलिए हमें सीता की याद आती है। तो इस तरह से भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और 4 महीने भगवान वहां बिताते हैं। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई, तब भगवान राम लक्ष्मण जी से बोलते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण मुझे लगता है कि सुग्रीव राज सुख और इंद्रिय सुख में इतना लिप्त हो गया है कि उसको मेरा दिया हुआ वचन भूल गया है। अब वर्षा ऋतु को बीते हुए 1 महीने ज्यादा हो गए हैं और अभी तक वो अपने वचन के अनुसार आया नहीं है ना, इसलिए तुम जाओ। भगवान थोड़ा सा क्रोध करके बोले है ना। अब भगवान जब थोड़ा सा क्रोध करें तब तो लक्ष्मण कितना क्रोध करेंगे आप समझ सकते हैं। अब कहा कि जाओ और तुरंत उसको लेकर के आओ है ना। जब भाई ने इतना कड़क में बोला तब लक्ष्मण का कि उसको आज हम सबक सिखाते हैं है ना। अब तुरंत धनुष बाण लेकर के बड़े क्रोध में भाई शीशा उतार रहे है ना, बड़े क्रोध में फुंकारते हुए एकदम गुस्से में है ना। आप समझ लीजिए बड़े बड़े बानर जो चौकीदारी करते थे सब दूर दूर से कई लेयर में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना कई लेयर में, तो जो बाउंड्री पर जो थे वो लोग जैसे क्रोध करते हुए देखा सब जो है बड़े बड़े पेड़ उखाने लगे कि मारने के लिए। जब देखा कि बानर हमें ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं तो उन्होंने अपना ऐसा क्रोध दिखाया और सब डर के भागना शुरू कर दी। अपना रूप जब भगवान लक्ष्मण जी ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया सब डर के मारे भागने गए और दौड़ करके बड़े बड़े जितने बानर थे ये आवाज कहाँ तक पहुंची, दौड़ करके वहां तक गए जहाँ पे आनंद से रुमा के साथ तारा के साथ अपने ऐश महल में ऐश कर रहे थे सुग्रीव सोए हुए थे मनमस्त होकर के। तो कुछ बानर जा करके उनको जगाए, हनुमान जी जाकर जगाए, अंगद जाकर कब जगाए है ना, लेकिन वो कर बदल के फैसले सो जाता था। तो सारे बानर इकट्ठे होकर उसके कान में चिल्लाए बड़े जोर से खूब आवाज लगाए है ना, तब जाकर के थोड़ा सा कुछ उनको होश आए। तब उन बानरों ने बोला कि आप तो यहाँ आनंद उठा रहे हो है ना, लेकिन पूरा क्रोध के अवतार लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में आ रहे, लगता विनाश कर डालेंगे। कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा आप क्या आप लोग जरा संभाले है ना। वो ऐसा करके फिर मस्ती भी आ गई और तारा को आलिंगन करके अपना आनंद लेने लगे है ना। और गुस्सा करके दरवाजे तक जब अंदर आ गए तब हनुमान जी फिर मिले। हनुमान जी ने कहा कि हे लक्ष्मण आप जो कह रहे हैं तो बात सच है कि थोड़ा भूल गए थे, लेकिन उन्होंने 15 दिन के अंदर पूरे विश्व के बाणों को संदेश भेज दिया है। हुआ है क्या कि हनुमान जी ने उनको 15 दिन पहले याद दिलाया था, किसको, सुग्रीव को, कि भाई आप आनंद लेते रहेंगे कि भगवान राम का भी काम करेंगे है ना। तो बिंद नाम के जो राक्षस थे और बिंद नाम के जो बानर थे उनसे कहलवा दिया था, हनुमान जी बिंद नाम का जो बानर है उससे बोल दो कि जा करके पृथ्वी पर जितने भी बानरी सेना है सबको कहो 15 दिन के अंदर ऋषिमुख पर्वत पर इकट्ठे हों है ना। इतना आदेश दे करके ऊपर अपने इस घर में चले गए आनंद उठाने, और उसके बाद फिर वो भूल गए है ना। ऐसा था। लेकिन लक्ष्मण जी को कहे कि मैं सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ, मैंने और इतने में अंगद आ गए और लेके गए वहां पे। जब अंतःपुर के काफी करीब भगवान के भाई लक्ष्मण वहां पहुंचे, क्रोध करके है ना, गुस्से में, तब जो है उनकी नींद खुली है ना, और उन्होंने तारा को भेजा है ना कि तुम जा करके संभालो है ना। अब तारा आई है ना, और चूंकि एक स्त्री को देख करके लक्ष्मण जी वैसे अपना सर नीचे कर लिए है ना, और तारा ने उनको बड़े ढंग से समझाया है ना कि आप इतना क्रोध मत करिए है ना, आप शांत हो जाए, और अब उनको होश आ गया है आपके आने से है ना, तो कहीं नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। वो एकदम अंतर तक ही जाना चाहते थे है ना। अब लक्ष्मण जी तारा के साथ अंतःपुर में प्रवेश किए तो सुग्रीव उसमें जानते क्या कर रहे थे, अपनी पत्नी रुमा को आलिंगन करके बैठे हुए थे बिस्तर पर। वो उस समय भी लक्ष्मण जी को इस जगह पर देख करके बहुत गुस्सा आया, और उनको देख करके जो सुग्रीव थे अचानक रुमा को छोड़ करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के तुरंत प्रार्थना की, टाटा के शर्म नहीं आती है ना। लेकिन तारा और रुमा भी आ गई, और जितनी स्त्रियां थी है ना, सब हाथ जोड़कर से खड़े हो गए है ना। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा किसी वक्त जो है आपको चलना है ना। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। अब हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ सब वापस आ गए भगवान राम के पास। अब जो सुग्रीव है ये भी आ गए। जैसे ही सुग्रीव हनुमान जी लक्ष्मण वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि 15 दिन हो गया था, और सुग्रीव ने जो आदेश दिया था कि 15 दिन के भीतर सारे बानर पूरे पृथ्वी से यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, बानरों की इतनी सेना वहाँ पे इकट्ठी हो गई है ना, भगवान राम भी आश्चर्य गए कि इतने बानर है ना, चारों तरफ बानर ही बानर, एक से बढ़कर एक बानर। एक और बानर होता है जिसका मुंह काला होता है, उसको क्या बोलते हैं, लंगूर। बड़े खतरनाक होते हैं ये जो लंगूर होते हैं, ये बानरों से ज़्यादा बुद्धिमान और बलवान होते हैं। मालूम नहीं आपको, कभी जब लंगूर आपको दिखाई पड़े है ना, तब उसको एक पत्थर उतार के मारो, कभी मारना मत, मैं इसे उदाहरण सुना रहा। वो जानते क्या करता है कि लंगूर की खासियत होती है, अगर आपने कोई पत्थर उठा करके लंगूर को मारा, जानते क्या करेगा, और बड़ी तेजी से वो आपके पत्थर को क्या करता है, कैश करके तुरंत रिवर्स मारता है, बड़ी तेजी से मारता है। माने आप जब तक समझेंगे तब तक वो पत्थर आपको लग जाएगा है ना, इतना तेज होता है पहला गुण। दूसरा गुण उसमें क्या होता है कि जैसे दो पेड़, एक पेड़ यहाँ पे है, एक वृक्ष यहाँ पे, एक वृक्ष इधर है ना, और उसको इस वृक्ष से उस वृक्ष पर पहुँचना है, छलांग लगानी है। अगर वो छलांग लगाया और कुछ दूर पर गया, और उसको ये एहसास हो गया कि हम उस वृक्ष की पर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो जानते हैं वो जहां तक पहुंचता है वहीं से रिवर्स हो जाता है, वापस आ जाता है। एक कला से लंगूर भी होती है, ऐसे हवा में पलटी मार देता है एक लंगूर। इसीलिए जब बानर होते हैं और लंगूरों से क्या करते हैं, डरते हैं। इसीलिए कभी कभी जो जब कोई क्षेत्र बंदरों से ज्यादा, बंदर लोग आतंक मचाते हैं है ना, तो लंगूर को बुलाया जाता है भगाने के लिए, तो लंगूर को देख करके बानर भाग जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये सब लंगूर भी सब पूरा भात भात के बानर है, सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वाल्मीकि रामायण बताया गया है, आप सब सुनिए। एक पहाड़ है जिसका नाम है कंचनगिरी। कंचनगिरी से 3 करोड़ बानर आए थे, कहाँ से, कंचनगिरी से। है ना, वाल्मीकि जी लिखा है, और अस्तांचल पर्वत से 10 करोड़ बानर आए, कितने हो गए 13 करोड़ बानर सिद्धो जगत से आए। फिर बताया गया है कि कैलाश पर्वत जहाँ किसका वास होता है, भगवान शिव जी का, तो कैलाश पर्वत से 10 अरब बानर आए थे कितना 10 अरब, टोटल कितने हो गए 10 अरब 13 करोड़ बानर। उसके बाद हिमालय पर्वत से एक नील मतलब होता है करीब 100 खरब का एक नील होता है, 100 खरब का एक नील होता है, तो एक नील बानर वहां से। अब विंध्याचल पर्वत बहुत फेमस है, वहां से 10 अरब बानर आए। अब आप सोचिए कि चारों तरफ जिधर दृष्टि देखो उधर बानर ही बानर एक अजब दृश्य था देख करके। अब बानर स्थिर नहीं रहते, ऐसा उछल कूद मचाए है नहीं। तो बताया गया है कि बानर और मेढक को आप स्थिर नहीं रख सकते, आप समझे ना, मेढक उछलेगा ही चलेगा अगर मेढक को तराजू रखे और उसको तोड़ना चाहो तो नहीं तुलेगा, भाग जाएगा, छलांग लगा ले चला जाएगा, पकड़ रखो फिर छलांग लगा ले। ऐसे बानर है स्थिर नहीं रह सकते, और इतने बानर सब पूरा चारों तरफ से, पर बानरों का सिर सिर दिखाई दे रहा है, इसमें हर प्रकार के बानर आए थे, सब बानर वहां पे इकट्ठे हो गए। तब सुग्रीव जो है खड़े हो गए है ना बानरों के बीच में, तब सारे बानरों के राजा वही थे, अब इतने भयानक बानरों के, उन्होंने कहा कि मेरे बानरों सीता जी की खोज के लिए पूरे पृथ्वी में जाना है, चारों दिशाओं में जाना है, और हर दिशा में एक एक लीडर उन्होंने बना दिया कि आप, क्योंकि सब ग्रुप में बन करके आए थे है ना, जिसका जो लीडर है अपने लीडर के साथ जाए तो उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, पूरे पृथ्वी में आपको खोजना है, किसको, सीता के लिए। अब देखो कैसी स्थिति है, सीता को किसी ने देखा नहीं है, अब फिर भी ढूंढने जा रहे हैं आप सोचिए किसको ढूंढने जा रहे हैं जिसको देखा नहीं है। तो सीता जी के बारे में बताया गया कि सीता जी कैसी हैं, है ना, और इस तरह सुग्रीव ने कहा कि आप सब लोग जितने बानर हैं सब चारों दिशाओं में छा जाइए, अब 1 महीने के अंदर सीता जी का पता लगाना चाहिए, टाइम बाउंड कर दिया, एक समय दे दिया कि 1 महीने के अंदर सीता जी का खबर मुझे देनी है, लेकिन हमारे पास तभी आना है जब सीता जी का पता लग जाए, अर्थात अगर सीता जी का पता नहीं लगाएंगे तो फिर खैर नहीं रहेगी, आओ तो सीता जी का पता लगा के आओ, नहीं तो मत आओ, नहीं, ऐसा बड़ा कड़क संदेश दिया। अब आप समझ लीजिए सारे पहले उत्तर दिशा की ओर जो बानर थे वो अपनी टोली बना करके निकले, फिर पूर्व दिशा वाले, पश्चिम दिशा वाले, दक्षिण दिशा की जब बात आई तो उसका लीडर किसको बनाया था, अंगद को, सेनापति अंगद को लीडर बनाया, अंगद के सलाहकार बनाए किसको, हाँ, जामवंत जी को, कब सबसे बुजुर्ग कौन थे, जामवंत जी थे, और सबसे बलवान बुद्धिमान उनके साथ कौन थे, हनुमान जी थे, तार नल नील त्रिवित ये सब जो बानर थे वो किसकी ओर जा रहे थे, इनको दक्षिण दिशा, क्योंकि जितना अभी तक खोज खबर लगी थी ये पता चल गया था कि रावण दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को लेके आए है ना, इसीलिए अंगद की जो टीम थी उसको किधर भेजा गया, दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन यह निश्चित नहीं था क्योंकि रावण का साम्राज्य पूरे पृथ्वी पर था, है ना, वो कहीं भी रख सकता था, है ना। इसीलिए सुग्रीव क्या कि सब जगह ले जाकर, क्योंकि लोग को धोखा दे सकता था कि ले गया रावण दक्षिण दिशा की ओर गया, सब ये बोलते थे दक्षिण दिशा की ओर गया, लेकिन वो वहां से रिवर्स भी कर सकता, कहीं भी जा सकता था, कहीं छुपा सकता था, है ना, चकमा दे सकता था। इसलिए चारों दिशाओं में बाणों को भेजा गया। अंगत लाइन भगवान राम लक्ष्मण और सुग्रीव ऐसे खड़े थे, ऐसे बैठे थे, लंबी लाइन लगी थी, किसकी अंतिम लाइन की, वो किसकी थी, अंगद सबसे आगे खड़े थे, फिर जामुन जी खड़े थे, फिर हनुमान जी खड़े थे, ऐसे पूरा क्यू क्यू अप थे, लाइन अप थे। भगवान राम ने कहा तीसरे नंबर हनुमान जी की ओर देख करके कि हनुमान जी आप इधर आ मेरे पास आ। हनुमान जी आए, भगवान राम के चरणों पर बैठ गए। भगवान ने कहा, श्री राम ने कहा कि हनुमान जी मैं आपको एक अंगूठी देता हूँ। अंगूठी उन्होंने निकाली है और हनुमान जी के हाथ में सौंपते हुए बोला कि जब सीता जी से मिलना तो ये अंगूठी उनको देना, जब अंगूठी आप उनको दोगे तो इसमें मेरा नाम इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई इसकी डुप्लीकेट बना नहीं सकता, लिख नहीं सकता, राम लिखा है इसमें, लेकिन इसकी संरचना कोई कर नहीं सकता, और इस अंगूठी को देख करके वो क्या करेंगी, पहचान जाएंगी कि आप मेरे दूत हो, है। अब देखिए इतने अरबों खरबों बाणों के बीच में भगवान ने किसको चुना, हनुमान जी को। क्यों चुना, इसलिए कि भगवान राम को, वो भगवान है ना, त्रिकाल की सब पता है कि सीता जी कहाँ हैं और कौन मिलेगा, उनको पता है, है ना? तो उन्होंने किसको, हनुमान जी को, और अंगूठी भी एक ही थी, सारे बाणों को तो अंगूठी दी नहीं जा सकती थी कि एक एक अंगूठी सबको दी जाती, ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि जो असली अंगूठी थी वो एक ही थी, तो एक ही खास व्यक्ति को भगवान ने दिया, जिसको भगवान को पूरा विश्वास था कि अगर सीता जी की कोई खोज करेंगे तो कौन करेंगे, हनुमान जी करेंगे, है ना। अब फिर वो अंगूठी हनुमान जी को दिया और कहा कि जा करके आप पता लगाओ, ये अंगूठी लेके जाना। अब अंगद और हनुमान जी जामत, अब इनकी टीम भी जो है दक्षिण दिशा की ओर निकली। जब एक महीना करीब आ गया और जितने वानर चारों तरफ गए थे किसी को सीता जी का पता नहीं लगा, तब वानर आने बंद कर दिए थे, है ना। और इधर हनुमान जी अंगद जी ये सब भी चारों तरफ पता लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सीता जी उनको मिली नहीं, दिखाई नहीं दी। ये लोग के कहीं कहीं ऐसे बल मिलते थे जहां इनको खाने पीने कुछ मिलता नहीं था, तो भूखे प्यासे अब पता तो करना है। अब ऐसे करते करते एक महीना खत्म हो गया, अब इनकी स्थिति और खराब हो गई। जानते क्यों, क्योंकि वापस जा नहीं सकते थे, क्योंकि सुग्रीव ने बोला था कि बिना पता लगाए कोई आएगा तो मैं उसको मारूंगा, दंड दूंगा, मारूंगा। इसलिए सुग्रीव के मार से वापस जा नहीं सकते थे, सीता जी मिल नहीं रही थी, है ना। अब इन लोगों की जो है मरना निश्चित दिख रहा था, कि कुछ खाने को मिलना भी नहीं था कुछ दिनों से, अब वे सब जो है बड़े परेशान थे। ये लोग एक जगह बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। अंगद ने बोला कि आज हमारी जो मौत नजदीक धीरे क्योंकि हम लोग कुछ समय मरने वाले हैं। कई तीन चार दिन से कुछ खाने को मिला नहीं, पीने को पानी भी नहीं मिला है, और मौत निश्चित है। इस सारा दुष्ट कैकेयी की वजह से हुआ है। अंगद जी बोलते हैं किसकी वजह से है, ये दुष्ट कैकेयी की वजह से हुआ है। उसकी जगह से इतने महान भक्त जटाऊ मारे गए, बेचारा बाली मारा गया है, और अब हम भी मारे ही जाएंगे। जब ये चर्चा कर रहे थे तो एक दूर से गिद्धराज पड़े हुए थे, जटाऊ के बड़े भाई, उनका क्या नाम है, संपाती। क्या नाम है, संपाती। संपाती जो है घात लगाए बैठे थे, वो भी यही सोच रहे थे कि जो बानर लोग हैं मरने वाले हैं कुछ समय, जब मर जाएंगे तो एक एक करके मैं आराम से सबको खाऊंगा, ये उन्होंने बोल दिया। तो ये बात उन लोगों ने भी सुन लिया था, तो कहे कि मौत निश्चित है, या तो जो कह रहा है कि इनको हम खाएंगे वापस जाएंगे तब मरना, भूखों भी मरेंगे, अथवा मरना क्या है निश्चित है हम लोगों का। लेकिन जैसे ही अंगद ने जटायु का नाम लिया, जटायु का नाम सुनते ही संपाति क्या हो गया, उसका हृदय पिघल गया। करे भाई आप लोग कौन हो जो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो। तब इन लोगों को जान में जान आई कि आप लोग मेरे करीब आओ। अभी लोग डर के मारे जा ले रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि मौत तो निश्चित है, भूखों तड़प के मरने से अच्छा है कि उसी के पास चलते हैं, खाना होगा तो तत्काल खा लेगा, कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन भूखों मरने से अच्छा है कि वही खा ले, लेकिन चलते हैं जगह बुला रहा है। तो ये लोग बड़े धीरे धीरे संपाती के पास गए। तो संपाती ने पूछा कि आप लोग कौन हो। तब उन्होंने बुलाया कि हम लोग भगवान राम और लक्ष्मण और सुग्रीव के ने भेजा है, हम लोग सीता जी का पता लगा रहे हैं। संपाती ने बोला कि आप लोग डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं सीता जी कहाँ पे हैं, है ना। जब ऐसा बोला तब इनको जान में जान आ गई। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, जटायु ने आपने बोला कि उनका मारे गए, तो मुझे जरा सरोवर तक ले चलो, हम उनका जल अर्पण कर दें, है ना। अबे लोग उसको पकड़े जटायु संपाती को और लेकर जल अर्पण कराया। फिर वहीं बैठ करके संपाती ने बोला कि एक बार क्या हुआ कि हम और मेरा भाई जटायु, अब वो कथा सुना रहा है कि हम और जटायु इंद्रलोक गए, वहां पे जाने के बाद फिर हम लोग सूर को पकड़ने के लिए वहां जाने की ठान ली। लेकिन मैं चाह रहा कि हमारा जो छोटा भाई जटायु था उसका पंख झुलसने लगा, वो उससे नहीं रह गया, वो वापस चला गया, है ना। लेकिन मैं जो है वहाँ पर, तो मेरा पंख जो है झुलस गया, तो मैं गिर करके यहाँ पर अटक गया। तो एक निशाकर ऋषि ने हमें ये वरदान दिया है कि जब सीता जी की तलाश में कुछ बानर आएंगे और आप थोड़ा सहयोग करोगे, पता बता दोगे, है ना, तब तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे और फिर तुम एजिटी से कुशल उड़ सकोगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग आ गए हैं और आप लोगों की कृपा से ये संभव होगा। तो मैं यहीं से देख रहा हूँ कि इसमें सीता जी कहाँ पे हैं, कि रावण उनको ले गया है और अशोक वाटिका में बैठा रखा है, सब बताया किस तरह से गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना विशाल समुद्र है, और इस समुद्र को भी क्या करना पड़ेगा, लाघना पड़ेगा, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा। तो जैसे ही संपाति ने ये सब बताया, इन लोगों की बाछें खिल गई, बड़े प्रसन्न हुए अंगद ने, चलो पता तो मिल गया। जटाऊ ने जैसी कथा समाप्त की, ये अपना बताया सब, सीता जी के बारे में सब बता दिया, उसके उनके सामने हनुमान जी के सामने देखते देखते उसके नए पंख क्या हो गए, उगाए। अब जब नए पंख उगाए तब वहाँ से संपाति आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान कर गए। अब ये लोग जो है आगे निकले हैं तलाश करते हुए, तो इनको एक गुफा दिखाई थी, है ना, बड़ी भयानक गुफा, है ना। वहाँ पे चूंकि इन लोगों को इतनी प्यास लगी थी, अगर पानी नहीं मिलता तो लोग शरीर छोड़ देते, है ना। तो वहाँ पे उनको कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, वहीं दिखाई देते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, बकुला वगैरह होते हैं, टिटिहरी बकुला, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पानी के आसपास ही दिखाए। जैसे हम गांव देश में क्या होता है, जहाँ बकुला दिखाई दे जान कि हाँ जरूर कोई पानी होगा, है ना, कि वो वहीं पे दिखाई देता है जहाँ पानी होता। तो लोग उस गुफा को गए, तो जब गुफा में प्रवेश करने लगे तो पूरा अंधेरा था। तो आगे अंगद ऐसे जा रहे हैं, अपना हाथ पीछे कर दिया, तो उनका हाथ किसने पकड़ लिया, जामवंत ने। और जामवंत ने एक हाथ पकड़ कर अपना हाथ उधर कर दिया उसको, हनुमान जितने बानर थे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वो गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दृश्य था। अब चले जा रहे हैं सब एक दूसरे का हाथ पकड़े, है ना, डर भी लग रहा है लेकिन सब बहादुर भी हैं। अब अंदर जा रहे हैं कि पानी भी पीना है। जब काफ़ी दूर अंदर प्रवेश कर गए हैं तब उनको बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत योगिनी, जो साधु के वेश में एक औरत दिखाई दी जो ध्यान में मस्त थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। अब ये स्वयं प्रभा वहाँ पे बैठे, अब ये लोग गए तो उसने बड़ा भव्य स्वागत किया इन लोगों का, और उसने कहा भी कि हमें अतिथि की सेवा इसी तरह से करना चाहिए, कोई जब अतिथि आए तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, बैठाना चाहिए, है ना। अब बैठाने के बाद क्या देना चाहिए, जल देना चाहिए, आए लोग प्यासे थे, है ना, इनको उन्हें क्या बैठाया भी और फिर जल दिया पीने के लिए। खूब आराम से लोग जल पिए, जब जल पी लिए तब इन लोगों ने पूछा, है ना, अंगद जी ने हनुमान जी ने अपना परिचय भी दिया, तब बताया कि हेमा नाम की जो अप्सरा है उसकी मैं सखी हूँ, ये स्थान उसी का है, है ना, और इस स्थान का देख रेख मैं करती हूँ, है ना, और इसलिए आप लोग यहाँ का हमारा जो आतिथ्य है उसको क्या करिए, स्वीकार करिए। तो बड़े लोग खुश थे, कहे कि मैं हम लोग सीता जी की पता लगाने के लिए हमको जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा, स्वयं प्रभा ने कहा कि देखिए इस गुफा का एक रहस्य है, है कि इसमें आदमी आ तो जाता है लेकिन जिंदा नहीं जाता, और आप लोग जिंदा नहीं जा सकते, इस खासियत इस प्रभा की कि आप तो आ गए लेकिन जिंदा नहीं जा सकते। तो अंगद जी जामुन का मुंह देखने लगे, जामुन जी हनुमान जी का मुंह देख ले, सब एक दूसरे का मुंह देख लगे कि कभी तो हम लोग को बड़ा सब अच्छा लगता, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, सब रमणीक दृश्य हुआ, लेकिन हमको क्या पता था कि मौत के मुंह में आ गए, कैसा हो नहीं सकता, असंभव है। उसे बोल दिया है कि इस गुफा से बाहर जिंदा निकलना क्या है, असंभव है, स्वयं प्रभा ने बोला। असंभव है, लेकिन बेचारी स्वयं प्रभा तरस खा गई इन लोगों का मुंह देख करके, है ना। एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, है ना, और फिर अतिथि के रूप में थे। उसने कहा कि लेकिन कुछ रास्ता मैं निकालूंगी, हाँ, मैं अपनी दैवी शक्ति से, हाँ, हम इस मुसीबत से हम निकालेंगे, है ना, लेकिन इसके लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। अब मरता क्या न करता, अब सब पानों लोग बिल्कुल पूरी ताक लगा करके सारे पानों आंख मूंद ली, है नहीं। जैसे ही आंख मूंद लिए, और दृश्य यही है कि सब आंख मूंद लिए, अपने ऐसे हाथ से आंख मूंद लिए, आंख बंद कर लिए और कैसे बंद कर लिए, जैसे ही किया तो कुछ ही पलों में उनको एहसास हुआ, क्योंकि गुफा में तो अंधकार था, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग लगता है बाहर आ गए हैं, लेकिन डर के मारे खोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि आंख खुली आंख से जा ही नहीं सकते थे उस गुफा से, है ना। लेकिन फिर जब उनको एहसास हुआ, थिमक करके धीरे धीरे अपना आँख खोला, जब पानों ने आँख खोला तब देखा कि एकदम बाहर हम लोग आ गए हैं। अब गुफा के बाहर निकलते ही उनको क्या दिखाई दिया, समुद्र दिखाई दिया। कहाँ पहुँचे, समुद्र के किनारे, है ना। गुफा इस तरह से कनेक्टेड थी कि उसका रास्ता कहाँ पहुँचता था, समुद्र तट के पास, है ना। अब ये लोग समुद्र, है ना, के पास जब पहुँचे तो इतना भयानक समुद्र और समुद्र की लहरें देख करके सब कहे कि अब लंका उस पार है, है ना, अब बीच में बाधा कौन डालेगा, समुद्र। सबका चेहरा उतर गया, है ना, क्योंकि बिना समुद्र को पार किए लंका जा ही नहीं जा सकता था। तब अंगद ने बोला, अंगद ने कहा, जितने बानर हो कौन कुदी लगा सकता है, छलांग कौन कितना छलांग लगा सकता है, है ना, अपना अपना शक्ति से खड़े होकर के बोलो। एक बानर जो उठ के खड़ा हुआ, है ना, उसने कहा कि मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि जो समुद्र की चौड़ाई है कितना है, 100 योजन की है, अगर तुम 10 योजन जाओगे तो समुद्र में गिर जाओगे, मारे जाओगे, तुम तो चुप ही रहो, बैठ जाओ, जाओ वहीं बैठ जाओ। लेकिन क्या करें, छलांग सभी लगाना चाहते थे। एक दूसरा उठा, कहे हे अंगद, मैं 20 योजन छलांग लगा सकता हूँ। कहीं आप भी बैठ जाइए, कहीं 20 योजन से काम नहीं चलेगा, है ना। फिर एक तीसरा उठा, 40 योजन, कहीं इससे भी काम नहीं चलेगा, 80 योजन, कहीं इससे भी काम नहीं चलेगा, हमें ऐसा बहादुर चाहिए जो कि 100 योजन कंप्लीट कर ले, है ना। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंगद जी ने कहा कि देखो, मैं छलांग लगा करके जा सकता हूं, लेकिन मैं वापस सकुशल आऊंगा या नहीं आऊंगा, एक कोई भरोसा नहीं। तो जामंत खड़े हो गए। जामंत ने कहा कि हे अंगद, आप हमारी सेना के प्रमुख हैं, अब प्रमुख को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, है ना, इसलिए आप छलांग, हमें पूरा विश्वास है आपकी ताकत पे कि आप जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, इसलिए कि आप हमारे सेनापति हैं। सब परेशान, है ना, क्या पता भी चल गया है, सब कुछ है, लेकिन ये समुद्र जो है रोना अड़ गया है, क्या किया जाए। अच्छा देखिए, जब ये सब बातें हो रही थी तो वहां सब तो थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं था। कौन? हनुमान जी नहीं थे वहां पे। हनुमान जी क्या करे, थोड़ी दूर जा करके जो हरी हरी घास जहां थे बैठे थे, और कुछ अपने ही सोच में डूबे हुए थे, है ना, मन बिल्कुल तनाव मुक्त, टेंशन फ्री, है ना, एकदम भगवान व्यस्त थे। तो जामंत जी ने कहा कि मैं कोई एक उपाय करता, अब मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूं, वही कर सकता है। तब जामंत धीरे धीरे जब नजर दौड़ाया कि यहां पे हनुमान जी नहीं दिखाई देखा, तो हनुमान जी एक जगह खड़े होकर के एकदम आनंद से, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, है ना, राम भक्त की क्या टेंशन रहेगी, है ना, वो आनंद में थे। अंगूठी ले करके बार बार अंगूठी देखें, क्योंकि अंगूठी उनके पास थी, उनको ये विश्वास था कि जब प्रभु ने अंगूठी हमको दी है, है ना, अब बोल भी दिया है कि जब आप सीता जी से मिलेंगे तो अंगूठी देना, इसका मतलब कि मैं पहुंचूंगा तो जरूर, है ना, लेकिन कैसे पहुंचूंगा ये उनको समझ नहीं आ रहा था, तो वो चिंतन कर रहे थे, है ना, वो भी सोच रहे थे। इतने में जामंत जी उनके पास पहुंच गए। जब जामंत जी पहुंचे तो जामंत जी कहते हैं कि हनुमान आप कहां खोए खोए से हैं, क्योंकि सारी जो आपकी सेना है वो चिंता में डूबी हुई है, आप कहां खोए हुए हैं, क्योंकि आप तो इतने बलवान हैं कि एक काम तो आप एक झटके में कर सकते हैं, एक छलांग में कर सकते हैं। तब हनुमान जी जो है ना थोड़ा कुछ चिंतन कर रहे थे, अपना ध्यान जामंत की ओर कंसंट्रेट किया। जामंत ने कहा कि हनुमान आपको पता है आपके जो कुंजन, एक बानर थे कुंजन, कुंजर नाम के बानर, और पुंजक स्थली नाम की एक अप्सरा थी। जामुन जी हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति बता रहे हैं कि आप पैदा कैसे हुए, है ना, कहीं उस अप्सरा जो पुंजक स्थली नाम की अप्सरा थी, है ना, श्रापवश बानर राज कुंजर के यहां पैदा हुई, और कुंजर ने उसका नाम क्या रखा, अंजनी रखा, और अंजनी बहुत ही खूबसूरत थी, है ना, तो कुंजर ने क्या किया, अंजनी की शादी केसरी नाम के बानर से कर दी, केसरी नंदनी से कहा जाता, केसरी नाम के बानर से कर दी। तो एक समय क्या हुआ, हनुमान जी सुन रहे हैं अपनी कथा, हनुमान जी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये हनुमान जी सुन रहे हैं। उसी समय अंजनी क्या कि एक दिन जब आपके पिताजी नहीं थे तो बहुत ही सुंदर स्वरूप श्रृंगार करके और कुछ फल फूल तोड़ने के लिए वहां पे पहाड़ पे घूम रही थी, है ना, और उसकी सुंदरता को देख करके, अंजनी की सुंदरता को देख करके जानते क्या हुआ कि जो पवन देवता हैं वो प्रभावित हो गए, है ना, उन्होंने क्या किया, जैसे आप लोग हवा को नहीं देख सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, आप हवा को देख सकते नहीं लेकिन महसूस करते हैं, कि आप हवा को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो उसी तरह अंजनी ने क्या देखा कि कोई व्यक्ति जो है हमें अपने आगोश में ले रहा है, हमें आलिंगन कर रहा है, तो वो घबरा सी गई। कह के आपके पिता पवन देवता जी ने कहा कि अंजनी तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारा सतीत्व पवित्र रहेगा, मैं तो तुम्हारे मन में प्रवेश करके हमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा है ना, वो बहुत ही बलवान और अमृत का होगा है ना। ऐसा कह करके उन्होंने अपने आलिंगन से छोड़ दिया अंजनी को है ना, पवन देवता कहे कि आप पैदा हुए अंजन सूत्र, और अंजनी ने क्या किया, आप छोटे से नन्हे से बालक थे है ना, आपको लिटा दिया था, अब कुछ फूल फल चुनने के लिए वो गई, आपने क्या किया, जब सूर्योदय हुआ है ना, और माता जी अंजनी माता जी बाहर गई थी, तो आपने सूर्य को देख करके उनको एक फल समझ लिया कि लाल रंग का एक फल है, और आपने छलांग लगा दी जब आप छोटे से नन्हे बालक थे, तब की सूर्य 3000 योजन कितना दूर सूर्य, और आपने छलांग लगा दी, और जिस दिन आपने छलांग लगाई थी उस दिन सूर्य ग्रहण था, और सूर्य ग्रहण किसका आ रहे हैं, राहु का, चंद्र ग्रहण केतु करता है, और सूर्य ग्रहण किसका भाग होता है, राहु का, तो राहु उस दिन सूर्य ग्रहण का था, तो राहु ने जैसे देखा आपको वो डर गया, क्योंकि वो तो सूर्य को खाने के लिए जा रहा था, और आपको देखा तो आपसे डर गया, तो राहु दौड़ करके किसके पास गया, इंद्र के पास गया है ना, कि आज तो सूर्य ग्रहण है, हमारा आहार कोई दूसरा कौन लेगा, और आप सूर्य को उड़ते हुए चले जा रहे थे है ना, तो जो इंद्र हैं वो ऐरावत हाथी पर बैठ करके, और अपना वज्र, इंद्र का वज्र बहुत ही फेमस, वो वज्र ले करके आकाश मार्ग से आए, और जब आपको लपकते हुए देखा है ना, तो आप जो है सूर्य की बजाय इंद्र को सफेद फल समझ करके, उनके हाथी को एक सफेद फल समझ के आप उनके पीछे पड़ गए, तो हुआ क्या, वो डर गए इंद्र है ना, आपका आवेश देख करके, और तुरंत अपने वज्र से क्या कर दिया, प्रहार कर दिया, और जैसे ही वज्र का प्रहार हुआ आप नीचे जमीन पर गिर गए, और आपकी जो ठोड़ी है ये थोड़ी सी क्या हो गई, मुड़ गई है ना, इसीलिए आपका नाम क्या हुआ, हनुमान पड़ा। हाँ, हनुमान जी की जय। तो जामन कहते हैं कि तभी से आपका नाम, हनु कहते हैं ठोड़ी को, हनुमान इसीलिए आपका नाम पड़ा है ना, क्योंकि इंद्र के बस से आपका हनु क्या हो जाएगी थी, टेढ़ी हो गई थी है ना, हनुमान पड़ा। और तब जाकर के राहु सूर्य इंद्र जो है उनकी जान बची, ये लोग इतने घड़ा। लेकिन जब आपके पिता, जब आप मूर्छित हो गए उनके बल से, तो आपके पिता जी ने क्या कि पूरे यूनिवर्स के तीन लोग की जो वायु की गति थी रोक लिया। हम सबको पता है कि आप जल के बिना कुछ दिन जी सकते हैं, अन्न के बिना कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन वायु के बिना आप 30 सेकंड से ज़्यादा जी नहीं सकते। हड़कंप मच गया पूरे यूनिवर्स में है ना, कि वायु की गति रुक गई, सब मर जाएंगे, सब लोग बिना बिना वायु कोई रह नहीं सकता है ना, और जो वायु ठहर गई है ना, सारे देवता भाग भाग करके आए और झड़ी लगा दी, किसकी, आशीर्वाद की, सब ने आशीर्वाद के दिल खोल करके आशीर्वाद, कुबेर ने, शंकर सब ने आशीर्वाद दिया कि आपका जो पुत्र है हर तरह से बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, आठो सिद्धियां सब अमर रहेगा। हनुमान जी तो अमर है कि सारे जो भी वरदान हो सकता था सारा वरदान दे दिया। कहे उसके बाद जब आप चेतना में आए तब आपका जो बल था, आप बचपन में बड़े चंचल थे, आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम जाते थे और उत्पात मचाते थे, उनका सब सामान कमंडल दंडी सब फेंक देते थे, इधर उधर कर देते, फल फूल तोड़ते थे, सब इतना उत्पात मचाते थे। तो उन ऋषि मुनियों ने क्या किया, आपको एक श्राप दे दिया कि आप अपने बल को भूल जाओगे, राइट, और आप अपने बल को भूल जाओगे, है ना। लेकिन उन्होंने बीच में एक बात बोल दिया था कि जब कोई आपके बल को याद दिलाएगा तब फिर आप जो है अपने असली रंग में आ जाएंगे। तो हे हनुमान, जब आप छोटे से नन्हे बालक थे तब आप इतने विशाल सूर को एक लाल फल समझ करके छलांग लगा ली थी, तो समुद्र तो आपके लिए बहुत छोटा है। जैसे जैसे हनुमान जी उनका उनकी प्रशंसा बल का बखान कर रहे थे, वैसे वैसे उनका जो शरीर था ना पर्वत के समान अपने आप होता चला गया, है ना। जामवंत सब देख रहे थे, जामवंत के सामने हो रहा था, लेकिन जामवंत जितने अपना विशाल रूप बनाते चले जा रहे थे हनुमान जी, और उतने हनुमान जी जामवंत जी और जोश में बता रहे कि हनुमान जी ऐसा कर करके समुद्र तो ये आपके बाएं हाथ, ये तो कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी जो है एकदम पूरा हार्ष बड़ा विशाल रूप धारण किया, सारे बानर उनके खड़े हो गए, जितने बानर बैठे थे वो जो बोला था कि 10 छलांग मारूंगा सब खड़े हो गए, जितने छोटे मोटे बानर थे सब सब खड़े गए, सब हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, कि हनुमान जी आप ही एक काम कर सकते हैं, और जोश डाल दिए। हनुमान जी जब पूरे जोश में आ गए तब हनुमान जी ने कहा कि मैं 1000 बार पूरे लंका को उखाड़ करके मैं आ जा सकता हूँ। पूरा ही क्या कुछ भी नहीं है, तो पूरा हम इसको लेकर रावण सहित हम उखाड़ कर लेकर के पास इतना पूरा कर रहे, सारे बानर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे हनुमान जी अब हमारी जीवन किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। हनुमान जी ने कहा कि हम महेंद्र पर्वत से छलांग लगाएंगे समुद्र का, है ना। बाणों ने कहा कि हनुमान जी जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक हम सारे बानर एक पैर पर खड़े रहेंगे बिना कुछ खाए पिए, है ना। सारे बानर जो हैं कहेंगे हम एक पैर पर खड़े रह करके आपका तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप सीता जी का पता लगा करके नहीं आएंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब हम कल जो है छलांग लगाएंगे। एक कथा कल बढ़ेगी सुंदरकांड की कथा, तो कल बड़ी सुंदर कथा है, कल संडे के दिन अब हनुमान जी कल छलांग लगाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। तो सब लोग खड़े हो जाइए, जाएगा नहीं, आरती के बाद ही जाना चाहिए, शिष्टाचारी। कल सुंदर कांड की कथा होगी, हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, तो कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, सही समय पर आइए। आरती शुरू करें।
श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम,
बोले चंद्र कृपालु
पद कंजारुणम
नव कांजल पद कंदरुना
कंदर्प अंगणित अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम
कंदर्प अंगणित अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम
तकपीत मानहु तड़ित कुछ शुचि नाम जनक सुदावरम
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नाम जनक सुदावरम
भजु दीन बंधु दिनेश दानव तैत वंशन कंदनम
भजु दीन बंधु दिनेश दानव तैत वंशन कंदनम
रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
आजान भुज सर चाप कर संग्राम चित खर दूसरम
अजानु भुज सर साप धरशन ग्राम चित खर दूसरम
इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम
इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम
मम हृदय पंजन वास कर कामाद खल दल गंजनम
मम हृदय पंजन वास कर कामाद खल दल गंजनम
मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो
मनु जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो
करुणान दान सुजान सील सने जानत रावरो
करुणान दान सुजान सील
शीश सुन सी सहित यह रसी अली
यही बांदी गोई आशीष सुन सी सहित यह रसी अली
तुलसी भवानी पूजित मुदित मन मंदिर चली
तुलसी भवानी पूजित मुदित मन मंदिर चले
श्री राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुणम
श्री राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुणम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम
जय रघुनंदन जय सिया राम
जय रघुनंदन जय सिया राम
जय रघुनंदन जय सिया राम
श्री राम जय राम जय जय राम
जय राम
श्री राम जय राम जय जय
वल्लभ जय सियाराम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
श्री राम जय राम जय जय राम,
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 जय रघुनंदन जय सियाराम,
जय रघुनंदन जय सियाराम,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
जय सीता राम लक्ष्मण मन हनुमान, सीता राम लक्ष्मण मन हनुमान,
सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान,
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद,
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद,
हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल,
बोल श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आज के आनंद की, गौर प्रेमानंदे
हरि बोल।